सबक शुरू होगा सूरत मायदा की आयत नंबर 27 से। सबक जो है आज का एक वाक्या है, मैं इसको अपने लफ्जों में पहले आपके साथ इंट्रोड्यूस करवा दूं ताकि फिर आप इसको रियली एंजॉय कर सके। चूंकि हम बनी इसराइल की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बनी इसराइल में कत्ल करना ऐसा ही आसान था जैसे कि गाजर या मूली को काट दिया जाए। एक एक दिन में इन्होंने 313 तक नबियों को भी कत्ल किया। इस कौम की आदत क्या थी, क्या थी और है, अल्लाह नोस दी बेस्ट, कि जो बंदा इनको अच्छा ना लगे या इनकी मर्जी का काम ना करे, ये उसको अपने रास्ते से हटाने के लिए कत्ल कर देते थे। ये सवाल जब जहन में उभरता है कि एक कौम कत्ल से इतनी ज्यादा करीब क्यों है, तो अल्लाह ताला अगली आयात में हमें दुनिया में पहला कत्ल जो किया गया उसकी कहानी सुनाकर बताते हैं कि जिसने दुनिया में कत्ल की इब्तदा की, जिसने ये बुरी रस्म डाल दी, उसका अंजाम क्या हुआ। असल में दो भाई थे, हाबील और काबील, और कहते हैं कि ये दुनिया के बिल्कुल इब्तदाई दौर का वक्त था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा के हाथ दो बच्चे पैदा होते थे, एक सुबह एक शाम। अब ये डिटेल सिर्फ आपके इंटरेस्ट के लिए सुना रही हूँ, लेकिन कहानी के अंदर बहुत ज्यादा जब गौर व फिक्र करें तो अमल की बहुत सारी चीजें दिखती हैं। तो हुआ क्या कि हाबील था एक का नाम, एक का काबील था। उस दौर में कोई वजह बन गई, लोग तो कहते हैं कि एक औरत वजह थी जिससे शादी करनी थी। अगर ये वजह थी या ना भी हो, हमें इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हुआ क्या कि दोनों ने किसी बात पर कुर्बानी की। हाबील की नीयत बहुत अच्छी थी, उसका इरादा बहुत अच्छा था, उसने बड़ी खूबसूरत सी चीज अल्लाह के रास्ते में कुर्बान की। किसान था तो उसने फसल बड़ी अच्छी दी। अगर वो बकरियां चराता था, उसने बहुत अच्छी बकरी का बच्चा अल्लाह के रास्ते में सदका कर दिया। इसके बरक्स काबिल दिल का खोटा था, उसने बेकार सी और वही जो लोग कहते हैं चलो रख दो ना इसको, अल्लाह वास्ते में डाल देंगे, इसको अल्लाह के लिए दे देंगे, इस तरह सोच के इसने खराब सी चीज डाल दी। अब अल्लाह ताला किसको कबूल करता है, इन्ना मयतकब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन, अल्लाह तो तकवा वालों की कबूल करता है। वही हुआ। उस दौर में कुर्बानी की कबूलियत का तरीका क्या था कि जिसकी कुर्बानी कबूल होती आसमान से आग आती और वो कुर्बानी का जानवर जला के रख देती। तो लोग समझ जाते, मुबारक देते एक दूसरे को कि हमारी कुर्बानी कबूल हो गई। लेकिन जिसकी ना कबूल होती उसकी सड़ती गलती रहती और लोग उसको देखकर बुरा मानते कि देखो इसकी कुर्बानी कबूल नहीं हुई। अब हाबील की हो गई, काबील की नहीं हुई। सोचना ये चाहिए था कि मेरी क्यों नहीं हुई। शैतान ने उसको ये सोचने के बजाय मेरी क्यों नहीं हुई इस पे डाल दिया कि उसकी क्यों हो गई। ये आज भी शैतान का हर्ब है जो आज उम्मत मुस्लिमा में हमें एक नासूर की तरह देखता है। बींग अ नेशन अगर आप देखें तो इस वक्त बिल्कुल हमारा भी यही हाल हो चुका है। अपनी हर महरूमी हर कमी का रिगार्ड हम दूसरों को देते हैं, कभी किसी मुल्क को, किसी पावर को, किसी सल्तनत को, और हम अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स पीछे कर लेते हैं। खैर क्या हुआ कि अब जो हाबील था वो बड़ा खूबसूरत था, ठंडे सुबह का था। किस तरह क्या होता रहा बाकी चीज आपको इंशाल्लाह कहानी के अंदर से सीखेंगे हम लोग। आइए शुरू करते हैं तर्जुमा आयत नंबर 27 सूरत मायदा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتلو عليهم نبأ بني آدم بالحق اور ذرا انہیں آدم کے دو بیٹوں کا قصہ بغیر کچھ کمی بیشی کیے سنا دو۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس کو سنانے کے درمیان آپ کو بالکل ڈسٹرب نہ کروں۔ تو ہم اس پورے قصے کو پڑھیں گے پھر اس میں سے مورلز لیں گے۔ جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی نہ کی گئی۔ اس نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا۔ इसने जवाब दिया अल्लाह तो मुत्तकियों की ही नसरें कबूल करता है। अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए हाथ उठाएगा तो मैं तुझे कत्ल करने के लिए हाथ ना उठाऊंगा, क्योंकि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा और अपना गुना तू ही समेट ले और दोस्त ही बनकर रहे। जालिमों के जुल्म का ठीक यही बदला है। आखिरकार इसके नफ्स ने अपने भाई का कत्ल इसके लिए आसान कर दिया और वो इसे मारकर इन लोगों में शामिल हो गया जो नुकसान उठाने वाले हैं। फिर अल्लाह ने कौवा भेजा जो जमीन खोदने लगा ताकि इसे बताए कि अपने भाई की लाश को कैसे छुपाए। ये देखकर वो बोला अफसोस मुझ पर, मैं इस कौवे जैसा भी ना हो सका और कि अपने भाई की लाश छुपाने की तदबीर निकाल लेता। इसके बाद वो अपने किए पर बहुत पछताया। इसी वजह से बनी इसराइल पर हमने ये फरमान लिख दिया कि जिसने किसी इंसान के खून के बदले जमीन में फसाद फैलाने के सिवा किसी और वजह से कत्ल किया, इसने गोया के तमाम इंसानों को कत्ल कर दिया, और जिसने किसी को जिंदगी बख्शी इसने गोया तमाम इंसानों को जिंदगी बख्शी। मगर इनका हाल यह है कि हमारे रसूल पै दर पे इनके पास खुली हिदायत की निशानियां लेकर आए, फिर भी इनमें से अक्सर लोग जमीन में ज्यादतियां करने वाले हैं। यह हमने देखा कि जब उसकी कुर्बानी कबूल ना हुई, गुस्से में आकर उसने भाई को मार दिया। नोट कीजिए, जमीन पे पहला कत्ल हसद की बुनियाद पे हो रहा है। और बाज लोग तो कहते हैं औरत भी एक वजह थी बीच में, तो हसद की कबाहत में ये वाकया पेश कर सकते हैं अगर कभी भी आपको दर्स देना हो, किसी से बात करनी हो कि ये खराबी है। दूसरी बात ये कि उस दौर में चूंकि कभी किसी ने किसी को मरता और कत्ल करता नहीं देखा था, अब मार तो दिया गुस्से में जोश में, अब उस लाश का करूं क्या? इंसानियत को पता ही नहीं था कि कैसे दफन करते हैं। तो अल्लाह ताला ने एक परिंदे के जरिए से दिखाया, कहते हैं दो परिंदे काबिल के सामने लड़े और एक को दूसरे को चोंच मारी और उसके बाद एक मर गया। तो उसका जो दूसरा भाई करी परिंदा था उसने जमीन खोद दी और अपने मुर्दा कौवे भाई को उसमें दफन कर दिया। ये मंजर देखकर काबिल को अपने ऊपर अफसोस हुआ। क्या अफसोस हुआ कि उसने भाई को मारा? नहीं, यहां बहुत अहम नुकता है कि इस पे नहीं शर्मसार हुआ कि हाय बेरहा से भाई क्यों मर गया। उसने भाई को फॉलो नहीं किया जो कह रहा था कि देखो तुम अगर मुझे मारोगे मैं तो नहीं मारूंगा, लेकिन उसने गाइड बनाया कौवे को। याद रखिए, जब लोग अल्लाह की दी हुई हिदायत को पीछे डाल देते हैं तो बाज दफा जानवरों को अपना इमाम बना लेते हैं। आज की पूरी डार्विनिज्म अगर आप जानती हैं तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से कहते हैं कि ह्यूमन इज अ इवॉल्व्ड ह्यूमन, हालांकि ये बिल्कुल गलत है। और आज बार बार इस पे क्यों जोर दिया जाता है कि डार्विनिज्म करो, उस पर लोग पीएचडी करते हैं, हालांकि वो अपने फैक्ट्स की वजह से खुद ही दुनिया में झुठलाई गई एक फोजरी थी। आगे भी 8वें पारे के शुरू में इसका कुछ इशारे हमें मिलेंगे कि उसने सिर्फ इस बात को क्यों किया। आज भी आप सोच सकते हैं तो उसकी वजह क्या है। एक दफा ये मान लो कि हम इंसान जानवरों की और परिंदों की और दरिंदों की नस्ल से हैं तो बस फिर हम कहेंगे जानवर कपड़े नहीं पहनते, हमें कपड़े पहनने की जरूरत नहीं। जानवर कहाँ शादी करते हैं, हमें शादी की जरूरत नहीं। जानवरों के अंदर फ्री सेक्स है तो हमारे अंदर फ्री सेक्स है। असल में इंसानियत को अल्लाह की इताअत से दूर करने का यह निजाम था जो बिल्कुल अपनी ही मौत खुद मर गया, लेकिन आज भी हमारे स्कूलों में बच्चे हमारे बड़े सब ये चीजें पढ़ते हैं। तो आप सबको भी इसका इल्म होना चाहिए। मैं आप सबसे जरूर चाहूंगी कि आप खुद भी ये सब कुछ पढ़ा करें, बहुत कुछ आपको पे भी मिल जाएगा और अगर ऐसी कोई बुक्स है, लेकिन बिला सोचे समझे मासूम बच्चों को ऐसी चीजें जब हम पढ़ा देते हैं तो नुकसान होता है। और याद रखिए, जब इंसान जानवरों को अपना इमाम बना लेता है तो फिर तो वो अल्लाह ताला को बिल्कुल पीछे डाल देता है। फिर दूसरी बात देखिए कि उसको इस बात पर अफसोस नहीं है कि मेरे हाथ से मेरा भाई कत्ल हुआ, अफसोस इस पे है कि मैं भाई की लाश नहीं छुपा सका। तो आज भी पूरी फिल्म इंडस्ट्री देख लीजिए, पूरा मीडिया देखिए, इसी बात पे आपको मुतहरिक दिखता है कि जुर्म तो करो लेकिन उसको छुपा दो। पूरी सनसनी है इस फिल्म में और जो भी आप देखें तो उसमें आपको यही कुछ दिखता है। तो यहां असल में अल्लाह ताला ने बता दिया कि वो पहला कत्ल जो काबिल के हाथ से हुआ, उसे कत्ल की वजह से दुनिया में कत्ल का रास्ता खुल गया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस से ये बात हमें मिलती है कि अब दुनिया में जो भी कत्ल होता है उसमें से हर कत्ल के अंदर काबिल का हिस्सा जाता है। क्योंकि हदीस एक और भी है कि जिसने कोई अच्छा काम शुरू किया उसके अच्छे काम का सिला उसको मिलता रहेगा जब तक अगले लोग वो अच्छा काम करते रहेंगे। आप और मैं इसमें से अमल की बात लें, बुरे काम को कभी शुरू ना करें। आज हम बुरा काम कहाँ शुरू करते हैं, वैसे तो हमें याद भी नहीं आता, लेकिन ट्रेंड्स क्या हैं, ये मॉडलिंग क्या है, अच्छे भले लोग बैठे होते हैं और कोई एक ऐसा ट्रेंड चल जाता है। और मैं सोचती हूँ कि फैशन में इतनी शान है कि औरतों के घुटने खोल सका, लेकिन मजहब में और अकीदे में इतनी भी नहीं कि बालों को ढक सके, सर को छुपा सके, सीने को छुपा सके। आज इस तरह से ट्रेंड सेट कर दिए जाते हैं, ऐसे तमाम लोग जो किसी भी जगह ड्रेसिंग कोड के साथ चले हुए, उनको इन आयतों से अपने लिए अमल की बात लेनी चाहिए। ट्रेंड्स बनाएं, अपना बिजनेस चलाएं, लेकिन कोई अगर ऐसा ट्रेंड बना दिया कि जिसमें हया के तकाजे पूरे नहीं होते तो वो क्या बाद में जितने लोग उस ट्रेंड को फॉलो करेंगे वो सबका गुना उनके अंदर होगा। फिर उसके बाद आप देखिए कि इसमें एक और चीज है और वो क्या है, बनी इसराइल में बिल्कुल कत्ल की वही सजा थी जो आज हमारे है। आज इस्लाम के नाम पर उम्मत वसत को बदनाम करने के लिए एक बहुत बड़ा मसला क्या खड़ा किया जाता है, डेथ पेनल्टी। आपको कहते हैं कि नॉर्वे में डेथ पेनल्टी नहीं है, और शायद आपको याद होगा चंद साल पहले एक शख्स ने स्कूल के शायद या कितने मुझे याद नहीं है 18, 20 या 80 के करीब बच्चों को जिबा कर दिया था, उनको ले जाकर कहीं, आज तक वो उसको मार नहीं सक रहे। वजह क्या कि उनके कानून में डेथ पेनल्टी नहीं। अब वो सारी माएं जिनके बच्चे गए उनसे पूछिए कि बताइए डेथ पेनल्टी क्या। आज आपने ये आयतें पढ़ ली, और यहां मैं आपको एक और शऊर की बात बताऊं कि सूरत मायदा में आपको तौरात की बहुत सारी आयतें दिखेंगी, ये भी है तौरात की आयत है। तौरात में कत्ल की सजा वैसे ही कत्ल थी जैसे आज इस्लाम को बदनाम किया जाता है, जिना की सजा बिल्कुल वैसे ही थी जैसे है। तो हमें शर्मिंदा नहीं होना, अगर हमें इल्म होगा तो हम बड़े पूरे शऊर से बता सकते हैं कि ये आज कौमों ने जब मानना छोड़ा तो लगा कि ये दीन में है ही नहीं, वरना उनके अंदर भी ये सब कुछ मौजूद था। अब इसीलिए अब अगली आयात में अल्लाह सुबहान तआला फरमाते हैं, आप लिख सकते हैं आयत नंबर 33, डकैती की सजा। हम ये चोरी की सजाएं तो जानते हैं, लेकिन डकैती क्या होती है, जैसे आप जानते हैं कि रॉबरी कह लीजिए कि लोगों को आके मारना, तो उसकी सजाएं यहाँ पेश कर दी गई। इन्नमा जज़ाउल्लज़ीना युहारिबूनल्लाह युहारिबूनल्लाह व रसूलहू, जो लोग अल्लाह और उसके रसूलों से लड़ते हैं और जमीन में इसके लिए तगोदो करते फिरते हैं कि फसाद करें, इनकी सजा ये है कि वो कत्ल किए जाएं या सूली पर चढ़ाए जाएं, या इनके हाथ और पांव मुखालिफ सिमतों से काट डाले जाएं, या वो जिला वतन कर दिए जाएं। ये जिल्लत और रुसवाई तो इनके लिए दुनिया में है और आखरत में इनके लिए इससे बड़ी सजा है, मगर जो लोग तौबा कर लें कबल इसके कि तुम इन पर काबू पाओ, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि अल्लाह माफ करने वाला और रहम फरमाने वाला है। आज अगर ये सजाएं हाई जेकर्स को मिलती, आज अगर गैंग रेप करने वालों को सजाएं मिलती, आज घरों में घुस के गोलियों की बौछार करने वाले लोग जिन्होंने घर में आते ही सबको ज़िबा करना शुरू किया और घर का माल असबाब लूट के, अगर उनको ये आयतें पता होती और इन पर अमल होता तो मुझे बताइए आज इतनी रॉबरीज होती। आज हम अपने मुल्कों में इतनी इनसिक्योर हैं और दूसरे मुल्कों में भी हालात के बहुत अच्छे नहीं दिखते, तो आप देखिए कि इस्लाम की ये सजाएं अगर दुनिया में एक दफा लागू हो जाए तो दुनिया से करप्शन और क्रिमिनलनेस सब कुछ खत्म हो जाए। लेकिन लगता है ऐसे कि आज लोगों की हमदर्दियां अवाम के साथ नहीं मुजरिमों के साथ है, हाय बेचारे मारे जाएंगे। ये तो ऐसी है कि आपके घर में एक कॉकरोच आ गया और आप उसको मारने की कोशिश करें और कोई के हाय इस बेचारे को रहने दो ना, आप कहते रहने दूंगी तो आज एक से दो चार दस होंगे, आप घर में नहीं रह सकेंगी। अल्लाह ताला की सारी हमदर्दियां साफ सुथरे और जो बामल किस्म के इंसान होते हैं उनके साथ है। आप देख लीजिए अल्लाह ताला को अपने बंदों से इतना प्यार है कि अगर कोई किसी बंदे की जान या माल लेना चाहे अल्लाह कहते उसको सूली पे चढ़ा दो, और हम इसको ना समझने की वजह से न जाने कैसे पेश करते हैं। और अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें अपने दीन को तो सीखने वाला बना दे। हम बाहर ऐसी कोई बात सुन के अगर आते हैं या नेट से कोई चीज हमें मिलती है या कोई हमें मुंह पे कहते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं, हम कहते हैं पता नहीं क्या इस्लाम आ गया हमारा, हम तो बहुत बैड फील करते हैं कैसा इस्लाम है, अल्लाह को ये नहीं चाहिए था वो नहीं चाहिए था। हालांकि इसके बरक्स आप देखिए हमें ये कहना चाहिए कि अल्लाह तेरा लाख शुक्र है कि तूने हमें इतना प्यारा दीन दिया, ये अलग बात है कि हम उस पर अब अमल नहीं करते। फिर इसी बात को आगे बढ़ाया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ए लोगो जो ईमान लाए हो अल्लाह से डरो और इसकी जनाब में बारजाबी का जरिया तलाश करो और इसकी राह में जिद्दोजहद करो, शायद कि तुम्हें कामयाबी नसीब हो जाए। खूब जान लो कि जिन लोगों ने कुफर का रवैया अख्तियार किया है, अगर इनके कब्जे में सारी जमीन की दौलत हो और इतनी ही इसके साथ और हो और वो चाहें कि इसे फिदिये में देकर रोजे कियामत के अजाब से बच जाए, तब भी वो इनसे कबूल ना की जाएगी और इनको दर्दनाक सजा मिलकर रहेगी। वो चाहेंगे कि दोजख की आग से निकल भागें मगर ना निकल सकेंगे और इन्हें कायम रहने वाला अजाब दिया जाएगा। अल्लाह का वसीला पकड़ने की बात है, बहुत सारे लोग वसीले का इनकार करते हैं, हालांकि आप देखिए ये आयत आपको बताती है कि अल्लाह का कुर्ब हासिल करो कुछ चीजों से। सवाल पैदा होता है कि अल्लाह का कुर्ब किन चीजों से हासिल किया जा सकता है, तो सबसे पहले तो अल्लाह के नाम, अल्लाह को आप कह सकते हैं अल्लाह तुझे तेरे रहीम होने का वास्ता, अल्लाह तुझे तेरे करीम होने का वास्ता, अल्लाह के नाम बेहतरीन वसीला है। फिर इसी तरह से हम अपने नेक अमाल को भी वसीला पेश कर सकते हैं, हमारे पास कोई ना कोई ऐसी नेकी जरूर छुपका के की होनी चाहिए किसी मुश्किल में लेके आए। एक हदीस बहुत दफा आप सबने भी सुनी होगी, बुखारी की रिवायत है कि तीन लोग किसी गार में फंस गए और पहाड़ लुढ़का, उसमें से एक पत्थर गार के मुंह पे आया और गार का मुंह बंद हो गया, बाहर बारिश हो रही थी जिससे बचने के लिए उन्होंने पनाह ली। अब वो बाहर निकलने का रास्ता नहीं पा रहे थे, तो उस वक्त इन तीनों ने क्या कहा, आपको अगर वो हदीस याद है, यही कहा था कि कोई अपना ऐसा अमल याद करो जो तुमने अल्लाह के लिए किया हो, आज हम अल्लाह को वो पेश करते हैं और कहेंगे कि अल्लाह अगर तुझे वो हमारा अमल पसंद था तो तू हमारे लिए इस बगार से निकलने का रास्ता बना दे। मैं और आप अपने लिए सोचें, क्या मैंने कभी कोई ऐसी खुफिया नेकी की इखलास से भरी हुई मुश्किल हालात में की हुई जब मेरे लिए वो नेकी बड़ी मुश्किल थी, अगर नहीं की तो नो प्रॉब्लम आप करते हैं। आपको मैं पूरे दिल के साथ कह सकती हूँ कि अगर आप कोई ऐसी नेकी जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करी हो, मुश्किलात में आप निकल के आ गई, रात भी नींद पूरी नहीं हुई थी फिर भी उठ के आ गए, सारी रात की जॉब थी सुबह उठ के वापस आ गए, बच्चा अल्लाह ना करे बीमार था आप फिर भी फजर वक्त पे पढ़ते हैं, उस दिन चुपके से ऊपर कह दिया करें कि अल्लाह आज की नेकी मैं संभाल के रखूंगी, फिर कभी खुदा ना खास्ता कोई मुश्किल आ गई, कोई परेशानी है, दिल को धड़का लगा है, उस दिन कहें फिर अल्लाह मैं वो उस दिन जो सुबह फजर पे उठ गई थी, अल्लाह उस दिन जो मैं कुरान के लिए आ गई थी, अगर तुझे मेरा ये अमल पसंद है मैं उसके वसीले से तुझे दुआ मांगती हूँ। तो इंशाल्लाह दूसरों इंसानों को बीच में डालेंगे उनमें आपका क्या फायदा, आपने कुछ किया अल्लाह आप उसकी मान रखे। ये बिल्कुल ऐसे ही कि एक बच्चा सारी रात पढ़ता है और सुबह स्कूल जाते हुए दुआ करता है दिल में कि अल्लाह तुझे पता है मैंने पूरी कोशिश की है पढ़ने की, अगर तुझे मेरा ये पढ़ना पसंद है तो आज मेरे लिए पेपर में आसानी कर दे। इट मेक सेंस। और तो मेरा फुलान दोस्त है ना वो सारी रात पढ़ता रहा, तो अगर अल्लाह आपको वो चीज पसंद है ना तो उसकी वजह से आज मेरा पेपर अच्छा करा दे। समझ नहीं आती, और इन छोटे छोटे इश्यूज को इतना फैला देते हैं लोग और उसके साथ उम्मतें बढ़ जाती हैं। तो आज उम्मत है मुस्लिमा को अल्लाह जो आज हालात हमारे ऊपर हैं, शायद आप कहें कि इनको बहुत ही खराबियां दिखती हैं, हमें तो सब कूल एंड काम दिखता है। कि कूल एंड काम उसको दिखता है जो खबरें नहीं सुनता, कूल एंड काम उसको दिखती है जिंदगी का एक सर्कल उसको दिखता है जिसके दिल का जिससे आप मोहब्बत होती है, आप उठते बैठते उसे देखते हैं बेटे का रंग पीला हो गया, इसके नाखून सफेद हो रहे हैं, इसका खून नहीं बन रहा, जिस बच्चे से आपको प्यार है आपको अपना बच्चा हमेशा कमजोर लगेगा, हमेशा बीमार लगेगा, ये पढ़ता नहीं, ये खाता नहीं, ये पीता नहीं, और आपने अपनी दोस्त के बच्चे के बारे में कभी नहीं सोचा होगा। तो अगर मैं और आप इस्लाम को वाकई अपने बच्चे जितना भी सोचें तो हमें तो उसका फिर रंग पीला दिखेगा, हमें तो उसके ऊपर एक हल्की सी भी बात, एक हल्का सा धब्बा बुरा लगेगा। हमारे फोन की स्क्रीन पर अगर एक हल्का सा धब्बा पड़ जाए हम इतने कॉन्शियस हो जाते हैं, इस्लाम के हमारे फोन से भी ज्यादा कीमती नहीं। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमारा ये अमल जो इस वक्त हम कर रहे हैं अगर अल्लाह तुझे पसंद है तो हमें इसी के वसीले से आज हमारी उम्मत के लिए रोशनियों के रास्ते खोल दे और उस पर हमें चला ले। अल्लाह ने फैसले किए हुए सिर्फ मैंने और आपने उसके ऊपर अमल करना है। फिर इसके बाद फरमाया जो की सजा है आप लिखना चाहें तो इस आयत का टॉपिक लिख लीजिए, बस सारी को बस सारे कद वक्त हो दी हुमा जसाम बिमा कसबा नकाल मिन अल्लाही वल्लाहु अजीजुन हकीम। और चोर ख्वा मर्द औरत हो या मर्द दोनों के हाथ काट दो, ये इनकी कमाई का बदला है और अल्लाह की तरफ से इबरतनाक सजा है। अल्लाह की कुदरत सब पर गालिब है, वो दानव भी ना है। फिर जो करने के बाद तौबा कर ले और अपनी इसलाह कर ले तो अल्लाह की नजर इनायत फिर इस पर मायल हो जाएगी। अल्लाह ताला बहुत दरगुजर फरमाने वाला और रहम फरमाने वाला है। क्या तुम जानते नहीं हो कि अल्लाह जमीन और आसमान की सल्तनत का मालिक है, जमीन और आसमानों की सल्तनत का मालिक अल्लाह है, जिसे चाहे सजा दे और जिसे चाहे माफ कर दे, वो हर चीज का इख्तियार रखता है। यहाँ चोरी की सजा सुनकर फिर कुछ लोग एम्बेरसमेंट फील करते हैं तो समझ लीजिए कि इस्लाम ने वो पूरा निजाम पहले बनाकर दिया, लोगों की बेरोजगारी खत्म हो गई, लोगों को अल्लाह का खौफ आ गया, दूसरों के मातिल बातिल तरीके से ना खाने की बात पर उनका ईमान हो गया। ये सब जब हो गया उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने नबी सल्लम के जरिए मदीना शहर में ये सजा लगवाई। और क्या चाहिए कितना हाथ काटना है हमें इसकी डिटेल्स भी नहीं पता, लेकिन याद रखिए कि एक मौके पे एक औरत फातिमा नाम की आई और उसने चोरी की थी, तो लोगों ने वो बड़े कबीले की औरत थी हजरत उसामा को सिफारशी बनाकर नबी सल्लम के पास भेजा और कहा कि जरा सिफारिश कर दे कि इस अल्लाह के नबी इसकी सजा माफ करवा दें। तो अल्लाह के नबी ने वहां उस वक्त वो जुमला बोला था जो आज उम्मत मुस्लिमा को सुबानी याद होना चाहिए कि हक और अदल के मामले में नसब नाता भी नहीं चलता। आपने फरमाया कि खुदा की कसम अगर फातिमा बिनते मोहम्मद अपनी बेटी की तरफ इशारा था वो भी चोरी करती तो मैं उसका भी हाथ कटवा देता। आज सऊदी अरब में ये सजा प्रैक्टिकली लागू है। आप हज और उमरे पे जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह कितने लोग के हाथ कटे हुए आप देखती हैं, कहाँ है आटे में नमक के बराबर। जहां जिस हाथ को पता है कि ये कट जाएगा अगर मैंने किसी मुसलमान के बैग में हाथ डाल लिया, किसी के पीछे उसके घर में झांप लिया, दिस एंड दैट, तो आप बताए कि उसका हाथ कटेगा वो करेगा। अभी रिसेंटली जब गए उमरे पे तो ऐसी वहम आता है कि होटलों में कमरों में चीजें जब रखते हैं तो क्या ये सिक्योर्ड है, तो ऐसे ही पूछा गया। तो जो ब्रदर थे हमारे उन्होंने कहा डोंट वरी, यहाँ के वर्कर्स को बहुत अच्छी तरह पता है, और कहते हैं अगर खुदा ना खास्ता अगर इनमें से किसी की कोई रिपोर्ट जाए, अगर आपको कोई अपनी चीज मिसिंग दिखे कभी एकदम ना आगे ले जाए, एक दफा मामला अदालत में चला गया उनकी सख्ती आ जाएगी। लेकिन वो करते ही नहीं चोरी, उनको पता है कि कौन अपना हाथ कटवाएगा। इसके बरक्स अगर आप आज सिर्फ एक छोटा सा काम कर लें, आप गूगल में जाइए क्राइम रिपोर्ट ऑफ दी 2014 इन डिफरेंट कंट्रीज, सिर्फ जो मर्जी लिखिए फिर आप जरा फिगर देन फैक्ट्स देखें जिन मुल्कों में हम बैठे हैं, यहाँ प्रैक्टिकली की चीजों से हम गुजर हो जाए कोई पूछने वाला नहीं है। अब तो कहते हैं यदि ये किसी एक स्टेट की बात बता रही हो कि वो कहते हैं अब चोरी के मुकदमे ही ना लिखाओ हम नहीं पकड़ सकते, इतनी चोरियां होती हैं। वो किसी की चोरी की खबर सुन के वैसे नहीं भागे आते जैसे फिल्मों में हम देखते हैं, वो चार चार छह छह घंटे के बाद आते हैं। ये दुनिया की तरक्की याफ्ता कौमें जहां इतनी सीआईडीज, इतने कैमरे, इतनी प्रोटेक्शन, वह वो आज मजबूर है, कहते सॉरी वी कैंट, हम इसको रोक नहीं सकते। लेकिन आज भी इस्लाम जहां लगा होगा, एक हाथ कट जाए बस हजारों चोर वापस चले जाएंगे। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमें अपने इस्लाम पर फख्र दे, ना कि हम इस पर दुखी महसूस करें। फिर चोर को भी तसल्ली दी गई कि तुम अल्लाह से मांग लो बादशाही तो उसकी है, तुम चोरियां करके क्यों लेते हो। और आपको एक हदीस सुना देती हूँ, क्यामत के करीब इतना माल दुनिया में होगा जमीन में से सोना निकलेगा। जमीन पे जहां से लोग गुजरेंगे सोने के ढेर पड़े होंगे, चोर वहां से गुजरेगा कटे हुए हाथ के साथ और कहेगा तुफ है मुझ पर, मुझे पता होता इतना आम हो जाएगा तो मैंने अपना हाथ कटवा लिया तुझे हासिल करने के लिए। तो ये दुनिया का माल है, इसकी क्या परवाह करनी, अल्लाह ताला हलाल से अता फरमाए। अगली आयतों में कुछ साजिशें हैं। मदीना में नबी सल्लम के खिलाफ इतनी साजिशें गई कि सबसे ज्यादा कातिलाना हमले बनी इसराइलियों की तरफ नबी सल्लम पे हुए। इसी की कुछ चीजें आपको यहाँ दिखेंगी। या युहर रसूलुल्लाह यहज़ुनकल्लज़ीना युसारिऊना फिल कुफ्र, ऐ पैगंबर आपके लिए बायस रंज न हो वो लोग जो कुफर की राह में तेजी दिखा रहे हैं, ख्वाह वो इनमें से हों जो मुंह से कहते हैं कि हम ईमान लाए मगर दिल इनके ईमान नहीं लाते, या ये उनमें से हों जो यहूदी हैं जिनका हाल यह है कि झूठ के लिए कान लगाते हैं दूसरे लोगों की खातिर, यानी सीआईडी करने के लिए, दूसरे लोगों की खातिर जो तुम्हारे पास कभी नहीं आए, सुनगुन लेते फिर किताबुल्लाह के अल्फाज को इनका सही महल मुतय्यन होने के बावजूद असल मानी से फिरते हैं और लोगों से कहते हैं अगर तुम्हें ये हुक्म दिया जाए तो मानो नहीं तो ना मानो, जिसे अल्लाह ही ने फितने में डालने का इरादा कर दिया हो इसको अल्लाह की गिरफ्त से बचाने के लिए तुम कुछ नहीं कर सकते। ये सब उनकी साजिशों का जिक्र है। फरमाइए ये वो लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह ने पाक न करना चाहा, इनके लिए दुनिया में भी रुसवाई और आखरत में भी सख्त अजाब है, ये झूठ सुनने वाले और हराम के माल खाने वाले हैं। देखिए ये दो खराबियां मदीना के बनी इसराइलियों में थी जो अल्लाह के नबी के दौर में थी। झूठ बहुत बोलते थे, उनकी पूरी जिंदगी झूठ पे थी। और दूसरी बात है अक्कालून अले सुख्त, अक्काल सुपरलेटिव डिग्री है आकिल से, खाने वाला, और सुख्त कहते हैं हराम के माल को। जब किसी कौम का जवाल शुरू होता है तो याद रखिए लोग खाने में हराम और हलाल का फर्क नहीं रखते। आज अगर कोई दुआ की जाए और वो कबूल ना हो उम्मत के बारे में तो फिर चेक करने की जरूरत है कि पेट में कहीं हराम का कोई लुकमा तो नहीं। हदीस में आता है कि एक शख्स अपने घर से निकलता है, तवील सफर तय करके खाना काबा के पास पहुंचता है, सफर की थकन, गर्मी, पसीना, फिर उसके बाद वो काबा का गिलाफ पकड़ के कहता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लेकिन आसमान से जवाब आती है ला लब्बैक वला सादैक, फरिश्तों ना इसका लब्बैक कबूल है ना इसका सादैक कबूल है। क्यों? कहा गुदिया बिल हराम, ये खाना जो इसके पेट में जो गजाब बना हुआ ये हराम का है, मलबसहु हराम, जो कपड़े इसने पहने वो हराम के। और फिर कहा कि कैसे अल्लाह उस बंदे की दुआएं कबूल करे कि जिसके पेट में और जिसके जिस्म पर हराम हो। आज उम्मत मुस्लिमा ये नियत कर ले कि अल्लाह ताला मैं अपनी पूरी मुमकिन कोशिश करके हर उस जरासीम को जो हराम के नाम पे मेरे कारोबार जो मेरी जॉब में उसको निकालूंगी। आप देखिएगा कि उम्मत की हालत बदलनी शुरू हो जाएगी। आप और मैं चुपके चुपके अगर अपने इर्द गिर्द लोगों में ये चीजें करते देखेंगे आसमानों से रिस्क बरसेगा और जमीन खजाने उगलेगी और अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को खुद उनके पाँव पे खड़ा कर देगा। फिर फरमाया बस अगर ये तुम्हारे पास अपने मुकदमात लेकर आए तो तुमको इख्तियार दिया जाता है कि चाहो तो इनका फैसला कर दो वरना इनकार कर दो, इनकार कर दो तो ये तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, फैसला करो तो फिर ठीक ठीक इंसाफ के साथ करो क्योंकि अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। क्या हम ये आयत का टुकड़ा पाकिस्तान और इंडिया और जहां भी मुस्लिम्स हैं उन अदालतों के बाहर नहीं लगा सकते? इंसाफ अल्लाह को पसंद है। जब अदालतों में झूठ बोला जाए और जब झूठी गवाहियां बने और सच को झूठ और झूठ को सच करने के लिए हजारों डॉलर हजारों रुपया दे दिया जाए और लिया जाए तो उन मुल्कों में फिर अल्लाह की रहमत कैसे आएगी? वकीफ युहक की मुंह न कमाइंदा हुक्मल्ला, और तुम्हें ये कैसे हकम बनाते हैं जबकि इनके अपने पास तौरात मौजूद है जिसमें अल्लाह का हुक्म लिखा हुआ है, फिर ये इससे मुंह मोड़ रहे हैं। असल बात यह है कि ये लोग ईमान रखते ही नहीं। अल्लाह के नबी जब मदीना में गए, यहाँ बहुत अहम नुक्ता बयान करने लगी हूँ। देखिए मदीना रिप्रेजेंट करता है एक मुस्लिम मुल्क को। मदीना में ज्यूस एक मिनोरिटी के तौर पर रहते थे। जब अल्लाह के नबी सल्लम मदीना में आए तो आपने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट में ये था कि ठीक है हम आपको आपकी मजहब की आजादी देंगे और जब कभी मदीना शहर पे हमला होगा तो आप सब मिलकर काम करें, यानी वो मुस्लिम्स के अंडर थे। ठीक हो गई बात। फिर उसके बाद आप देखिए कि मदीना में अल्लाह के नबी ने दो अदालतें कायम करवाई, ये बहुत बड़ा नुकता है हम वेस्ट में रहने वाले मुस्लिम्स के लिए। आप हिस्ट्री खोल के देखिए, यूरोप में सबसे पहले मुस्लिम कब आए, यूएसए में सबसे पहले मुस्लिम्स कब आए, कैनेडा में सबसे पहले मुस्लिम्स कब आए, मेरा ख्याल 9 सदियों से भी ऊपर हो चुका होगा। आज तक हम नॉन मुस्लिम मुल्कों में अपनी मुस्लिम अदालतें कायम नहीं करवा सके। अल्लाह ना करे किसी कपल में डाइवोर्स होती है तो वो इस्लामिक डाइवोर्स नहीं चलेगी, उनको अपने तरीकों से डाइवोर्स लेनी है। अडॉप्शन को देख लीजिए, मैरिज को देख लीजिए, कोई मर जाता है तो विरासत के वो कानून नहीं। अल्लाह के नबी ने दुनिया के पहले मुस्लिम मुल्क में यहूद को उनकी अपनी अदालत बनाकर ये रस्म डाल दी थी कि मुस्लिम दुनिया के किसी मुल्क में भी रहेंगे लेकिन उस मुल्क की हुकूमत को रिलीजियस फ्रीडम के नाम पर वहां एक उनके मुल्क देनी चाहिए। आज तक हम इसको क्यों नहीं ले सके? साफ हो जाए कि हमने अपने मुल्कों में नहीं ये किया और हमने इसकी जरूरत महसूस नहीं की। कल एक सिस्टर ने बात की, मुझे बड़ी अच्छी लगी उनकी बात थी कि हम मुस्लिम्स जहां से भी आते हैं, पीछे से ईस्ट से आने वाले खासतौर पर, खाने पीने के हराम हलाल के बारे में बहुत क्यूरियस होते हैं। पिग नहीं खाते, हराम गोश्त नहीं खाते। इसीलिए आज आप अमेरिका से, कनाडा से, जहां भी घूमे, हो सकता है आप सिर्फ अमेरिका में देखते हो, अल्लाह ने मुझे कई नॉन मुस्लिम मुल्कों में जाने का मौका दिया, हर मुल्क में इट्स ऑथेंटिक, इस प्रूवन फैक्ट कि मुस्लिम नहीं ये खाएंगे। हलाल मीट की दुकानें मौजूद हैं, हलाल पिज्जाज मौजूद हैं, ग्रोसरीज में मौजूद है, इवन जहाजों में आप देखिए कि आपको मुस्लिम मील ऑफर करते हैं। वाई? क्योंकि हम उसके लिए केयरफुल थे। जब हमने जो चीज मांगी उन्होंने हमें दे दी, जब हमने नहीं मांगी वो क्यों दें भाई, उनको क्या लगे? तो जिस चीज को आप मानेंगे, मैं अक्सर लोगों से पूछती हूँ कि आज तक मुस्लिम बैंक क्यों नहीं बने। यूरोप में हम गए जब नॉर्वे में, तो हमें अपने स्कूल के लिए बैंक अकाउंट लेना, तो उस सिलसिले में कुछ पेश रफ्त हुई, पता चला इधर कुछ है ही नहीं इस किस्म का। भाई हालात क्या है, मसला क्या है, सारी बात का खुलासा ये कि कोई मुस्लिम बैंक नहीं, इंटरेस्ट फ्री नहीं है। तो मैंने पूछा, ये बताइए कि इस शहर में कितनी गोश्त की दुकानें हैं, मस्जिदें कितनी है ना? वो जरूरत थी, वो बन गई, लेकिन आज तक एक बच्चों का स्कूल क्यों नहीं प्रॉपर बन सका और आज तक मुस्लिम बैंक क्यों नहीं बना? आज दुनिया के किसी मुल्क को देखें, वजह साफ जाहिर है कि हमने जरूरत नहीं महसूस की। जब आप किसी मुल्क में आते हैं ना, तो आप उस मुल्क की जिम्मेदारी बनते हैं। हम जितने भी मुस्लिम मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह यूएसए में, कनाडा में, हर मुल्क वाले, अगर हम सब इस चीज पे यूनाइट हो जाए ना कि हमें इस्लामिक रूल्स के साथ बैंक चाहिए, दे नीड टू मेक इट, क्योंकि आप उनकी जरूरत है, आपने उनके मुल्कों की पूरी इन चीजों को कंट्रोल किया हुआ है। लेकिन जब हम नहीं मांगते तो कोई कहेगा भाई हम इनको क्यों दें? तो ये बात मैंने आपके से इतनी लंबी इसलिए रखी कि शायद में वो हुक्म है कि यहूद को पूरा इख्तियार था कि वो काब बिन अशरफ, जो दूसरी अदालत के लीडर थे, उनके पास जाएं। और नबी सल्लम के पास कौन लोग आते थे? मुसलमान। लेकिन मजे की बात देखिए कि मुसलमान जब कभी झूठे होते, यानी मुसलमानों में कोई क्रिमिनल होता ना, तो वो नबी के पास आने के बजाय यहूद के पास जाना पसंद करता। आजादी थी हर एक को, यू कैन गो टू दिस कोर्ट और दिस कोर्ट। वजह के उसको पता था कि अल्लाह के नबी तो मेरे साथ नरमी नहीं करेंगे, हाँ हो सकता है उधर के लोगों को कुछ माल पैसा देकर मैं मन जाऊं। इसी तरह पीछे हम एक वाक्य पढ़ चुके हैं, वहां डिटेल नहीं बताई गई थी, लेकिन उसमें भी यही था कि एक ज्यू और मुस्लिम का मामला था। चलिए सिर्फ ज्यूज के मैटर में ज्यूज में जाएं, मुस्लिम्स के थे मुस्लिम है, समटाइम एक पार्टी जो थी मुस्लिम होती थी, एक ज्यू होती थी, फिर भी टाई पड़ती थी। तो ऐसी एक टाई पड़ी थी, सच्चा यहूदी था, झूठा मुसलमान था। अल्लाह के नबी के पास जाने के लिए किसका दिल करना चाहिए था? मुस्लिम का। लेकिन जियो कह रहा था कि मैंने नबी की अदालत में जाना है कि उसको पता था कि ये शख्स रिश्वत लेकर मुझे झूठा नहीं करार देगा। और मुसलमान जो मुनाफिक था उसने कहा नहीं, मुझे तो काब बिन अशरफ के पास जाना है। तो याद रखिए किरदार हर तरह के होते हैं। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमें अपने हकूक को लेने वाला बना दे। हम किसी के नहीं ले रहे, कहते ना छेड़ो ना छोड़ो, अपना हक छोड़ो नहीं, किसी का हक कभी दबाओ नहीं, ये इस्लाम का मिजाज है। फिर फरमाइंदम, अब ये सारी आयतें जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये तौरात की हैं। तौरात की बारे में अल्लाह सुब्हान तआला कितने खूबसूरत कमेंट्स दे रहे हैं, लेकिन याद रखिए इस तौरात से मुराद आज की बाइबल नहीं है, क्योंकि उसमें तो इंसानों की थॉट्स आ चुकी। क्या फरमाया? हमने तौरात नाजिल की जिसमें हिदायत और रोशनी थी, सारे नबी जो मुस्लिम थे इसी के मुताबिक इन यहूद के मामलात का फैसला करते थे, इसी तरह रब्बानी उलमा और अहबार भी इसी पर फैसले करते थे, क्योंकि इन्हें किताबुल्लाह की हिफाजत का जिम्मेदार बनाया गया और वो इस पर गवाह थे। पस गिरोह यहूद, तुम लोगों से ना डरो बल्कि मुझसे डरो। ये बात नोट कर लें, जब दीनदारों के अंदर लोगों का खौफ आ जाता है ना, तो अल्लाह की किताब के अहकामात को बदल देते हैं। ये ही आदत यहूद के उलमा की थी, और आज अल्लाह माफ करे किसी हद तक मुसलमानों में भी ऐसी बातें दिखने लगी, तो अल्लाह ताला डांट रहे हैं कि देखो लोगों से नहीं डरो बल्कि मेरी आयतों को जरा जरा से मुआवजे लेकर बेचना छोड़ दो। पैसे लेते थे, हुक्म बदल देते थे, फतवा बदल लेते थे। जो लोग अल्लाह के नाजिल करदा कानून के मुताबिक फैसला न करें वही काफिर हैं। हाईलाइट करेंगे इसको, अल्लाह के नाजिल करदा पर फैसले ना करने वाले लोग मुनकर हैं। आज हम अल्लाह के फैसले नाफिज नहीं कर पाते तो अल्लाह के यहाँ क्या मुकाम होगा। फिर तौरात का एक हुक्म हमारे सामने, वो कतबना अलैहिम फीहा, तौरात में हमने यहूद पर ये लिख दिया था कि जान के बदले जान, आंख के बदले आंख, नाक के बदले नाक, कान के बदले कान, दांत के बदले दांत, और तमाम जख्मों के लिए बराबर का बदला है। फिर जो कसास का सदका कर दे तो इसके लिए कफारा है। और जो लोग अल्लाह के नाजिल करदा कानून के मुताबिक फैसला न करें वही क्या कहा काफिर। अब इस आयत में क्या कहा जालिम। फिर आगे बात आ गई नसारा की, यहां से आपको ये साबित हो गया कि ये सारी सजाएं तौरात में थी। अब इंजील की बातें आएंगी। वक़फ़ैन अला आसारिहिम बीसब्नि मरियम मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि मिनत तौरात। फिर हमने इन पैगंबरों के बाद मरियम के बेटे ईसा को भेजा तो तौरात में से जो कुछ इनके सामने मौजूद था वो उसकी तस्दीक करने वाले थे, और हमने इनको इंजील अता की जिसमें रहनुमाई और रोशनी थी, और वो भी तौरात में से जो कुछ इस वक्त मौजूद है इसकी तस्दीक करने वाली थी, और अल्लाह से डरने वाले लोगों के लिए सरासर हिदायत और नसीहत थी। है कोई दुनिया की किताब जो अपने अंदर दूसरी किसी किताब की तारीफ करे? अमूमन लोग दूसरे को तो पीछे ही डाल देते हैं। कुरान तौरात की तारीफ करता दिख रहा है, कुरान तो इंजील की, लेकिन कौन सी जो असल में उतरी थी आज कौन सी है वो बिल्कुल बदल जा चुकी। तो अल्लाह ताला कहते हैं अपने वक्त के लोगों के लिए ये बहुत अच्छी गाइडलाइन थी। हमारा हुक्म था कि अहले इंजील इस किताब के मुताबिक फैसला करें जो अल्लाह ने इसमें नाजिल किया है। और बात ये है कि वमन लम यहकुम बिमा अनज़लल्लाहु फौलाइका हुमुल फासिकून, जो लोग अल्लाह के नाजिल करदा कानून के मुताबिक फैसला न करें वही फासिक है। शायद आप इस बात की शिद्दत को समझें कि नहीं, अल्लाह ने उन लोगों को जो इस्लाम के नाम पर मुल्क हासिल कर लें और फिर वहां इस्लामी निजाम नाफिज ना करें उनको काफिरून फासिकून, और यहां आप देखिएगा कि जगह कहते जालिमून, काफिरून जालिमून और फासिकून कहा। तो रात के नाते से भी बात हो गई, नसारा के साथ भी हो गई। आप कहते उनको कहा होगा, आज हमारी बात नहीं, तो अगली आयत पढ़ लीजिए। वंजल नई लई कल किताब बिल हक की, फिर है नबी हमने आपकी तरफ ये किताब भेजी। कौन सी? हाथ लगा के चेक करिए ये किताब जिस वक्त मेरे और आपके सामने है, जो हक लेकर आई है, और अल किताब में से जो कुछ इसके आगे मौजूद है इसकी तस्दीक करने वाली और इसकी मुहाफिज और निगेबान है। बस तुम अल्लाह के नाजिल करदा कानून के मुताबिक लोगों के मामलात का फैसला करो, और जो हक तुम्हारे पास आए इससे मुंह मोड़ कर इनकी ख्वाहिशात की पैरवी ना करो। इसको हाईलाइट कीजिए, ये है सबसे बिग इशू। किताब को लोग कब बदलते हैं? जब वो उनकी ख्वाहिशों से टकराती है। देखिए दो दीन होते हैं, एक होता है हुदन और एक है हवा। हुदन क्या है? गाइडेंस। और हवा क्या है? आपकी डिजायर्स। जब लोग अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारना चाहते हैं ना, तो उनको किताबें रास्ते की रुकावट दिखती हैं। लिहाजा जो लोग अपनी ख्वाहिशों के पीछे लगते हैं फिर उनको किताब बोझा लगती है, कहते इट्स टू हार्ड, वेरी मुश्किल, बहुत मुश्किल है। आज तक आप देखिए कि क्यों हम अपने ही मुल्कों में इस्लाम को आता हुआ नहीं देख पा रहे, पीछे क्या रुकावट क्या है? कोई बहुत बिग इशू है। बहुत बिग इशू क्या है? अहवाहुम। आज इस्लाम आ जाए ना, इस्लामिक निजाम लग जाए हमारे अपने मुल्कों में, तो आधे लीडर तो वहीं खत्म हो जाएंगे। उनकी करप्शन की इतनी लंबी लिस्टें खुलेंगी कि फिर वो तख्त पे से उठ के तख्ते पे चले जाएंगे, इसलिए वो इस्लाम को नहीं आने देते। आज मुसलमान मुल्कों में इस्लामिक लॉज क्यों नहीं लग रहे? क्या कोई बड़ी ताकत उसकी दुश्मन है? उनको क्या लगे? हम खुद दुश्मन है, क्योंकि हमें फिर अपनी अथॉरिटी खत्म होती दिखती है। जब तक ये नाफिज नहीं होगा ये जैसे ही चलता रहेगा। 60 साल के करीब तो अरसा गुजर ही गया ना, इससे भी आगे और गुजर जाएगा। जब तक कोई ऐसा मर्द मोमिन सामने नहीं आता कि जो बिल्कुल अल्लाह के लिए इस काम को करने वाला होगा और दुनिया की किसी ताकत से नहीं डरेगा, तब तक ये काम नहीं होगा। और अल्लाह से दुआ करते हैं कोई उमर आज के दौर में फिर आ जाए। उमर ने इस जुर्रत के साथ इस्लाम को नाफिज किया था कि दूसरे उनके लिए कुछ भी ना कर सके, और फिर मुझे और आपको कब, आप और मैं क्या करें? आप सोच रहे होंगे अच्छा ये तो बड़ा मुश्किल है, पाकिस्तान में इस्लाम कैसे है, इंडिया में मुस्लिम्स को कैसे इस्लाम मिले? तो आप और मैं, ये मट्टी का एक तोता जो 5-6 फुट का मेरे और आपके हाथ में, इस पे इस्लाम लगा दें। आप और मैं अपने 1000 गज के एक बंगले में इस्लाम ले आए। हर एक अपनी जगह पे पूछा जाएगा। पहले अल्लाह मुझसे पूछेगा तुमने इस जिस्म के ऊपर इस्लाम लगाया? आप मुल्क पाकिस्तान में कहते हैं इस्लामी निजाम आ जाए, वहां सजाएं मिले, वहां बेनिफिट्स मिले इस्लाम के, आपसे नहीं पूछा जाएगा। हाँ, एक खास हद तक हमारा हिस्सा हो सकता है, लेकिन मेरे इस जिस्म पे मैंने अल्लाह के हुक्म को माना के नहीं, मेरी आंखें, मेरे हाथ, मेरा जिस्म, मेरी सोचे अल्लाह के हुक्म पे नहीं थी कि थी, इस पे तो मुझे पूछा जाएगा। जब आपको अपने ऊपर आता हुआ फील हो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह का, तो फिर उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे अपने बच्चे, घर, फिर आपके घर के मुलाजिम, मुलाजिमों से बाहर निकले दोस्त हैं उनके घरों पे आहिस्ता आहिस्ता असर दीजिए। इस्लाम इतने खूबसूरत तरीके से फैलता है, गैर महसूस तरीके से हम इस्लाम के नुमाइंदे बन जाते हैं, लेकिन अगर हम अपने ऊपर नहीं डालेंगे तो दुनिया में कभी कुछ नहीं होगा। अल्लाह के नबी का कारनामा ये था, आपने अफराद तैयार किए, लोग खुद गुनाह करके पलट के घर नहीं जाते थे, अल्लाह के नबी के पास आते। याद रखिए, जब हम खुद अपनी अदालत बन जाते हैं ना, जब हमें आखिरत की सजाओं की फिक्र रातों को सोने नहीं देती, तो हम इस्लामी निजाम को नेमत समझते हैं कि क्योंकि ये प्योरीफाई करने वाला है। जिस गुनाह पर दुनिया में सजा लग जाए, क्यामत के दिन उसके बारे में नहीं पूछा जाएगा, खत्म हो गया मामला। और जो लोग आज चोरियां, डाके, कत्ल, गारत करते करते दुनिया से जाते हैं, कितने उनके अगेंस्ट केसेस हैं जो क्यामत के दिन खुलने वाले हैं। तो शऊर पैदा करने की जरूरत है इस वक्त हमें अपने अंदर, अपने बच्चों के अंदर, और अल्लाह ताला हमारे लिए इसको आसान कर दें। फिर उसके बाद फरमाया, लिकुल जालना मिनकुम शिरातन व मिनहाजा, हमने तमाम इंसानों में से हर एक के लिए एक शरीयत और एक राह अमल मुकर्रर की, अगर जो तुम्हारा रब चाहता तो तुम सबको एक उम्मत बना देता, लेकिन इसने ये इसलिए किया कि जो कुछ इसने तुम लोगों को दिया है इसमें तुम्हारी आजमाइश करें। ये है आयत हाईलाइट करने के काबिल, बाद में गौर कीजिएगा इस पे, तदब्बुर कीजिएगा, तो आपको एक बहुत बड़ी हकीकत समझ आएगी, और वो क्या है, वला के लिया बलुआ कुम्फी माता को, तुम्हें जो कुछ दिया है वो आजमाइश के लिए दिया। आप कह लीजिए हर नेमत इम्तिहान का पर्चा, जिसको अल्लाह ने थोड़ी नेमतें दी है ना दुनिया में, उसका इम्तिहान छोटा है, कम सब्जेक्ट्स हैं। आप देखिए कि शुरू में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं ना, फिर जब आप एक स्पेशलाइजेशन पे जाते हैं तो सब्जेक्ट थोड़े हो जाते हैं, लेकिन डीप डाउन स्टडी करनी पड़ती है। आपके और मेरे ऊपर अल्लाह ताला ने जितनी नेमतों की बारिश की है, बच्चे, घर, माल, गाड़ी, औलाद, सेहत, खूबसूरती, जो कुछ भी आपके और मेरे पास है ना, अल्लाह ताला कहते लिया बलुआ, हम देख रहे हैं तुम्हें ये नेमत हमने दी है ताकि हम चेक करें हाउ यू विल यूज इट, फी माता को करो क्या फिर इन नेमतों को लेकर, फर्स्ट तबिकुल खैरात, नेकियों में एक दूसरे से आगे बढ़ो। जैसे माल में लोग आगे बढ़ते हैं, जब बड़े घरों में बढ़ते हैं, जब लोग अपने से अच्छा जोड़ा दूसरे का नहीं देख सकते, कपड़ों में, मेकअप में, शक्लो सूरत में आगे बढ़ते हैं, तुम खैरात में आगे बढ़ो। तो याद रखिए इस्लाम रोकता नहीं है, अल्लाह ने आपको नेमते दी है, आप बड़े से बड़ा घर बनाए नो प्रॉब्लम, हलाल का है, आप जकात देते हैं, आपकी कीमत है, आप उस घर में रहकर सुकून से जीना भी चाहते हैं, हरज नहीं, शर्त यह है कि आप उस घर के अंदर अल्लाह के तरीके से रहें, आपका वो घर आपका ही ना रहे वो अल्लाह का। इसी तरह ये सब तरफ चीज जाएगी इंशाल्लाह, ये नेमतें हमारे लिए बल्कि जन्नत के सर्टिफिकेट बन जाएंगी, क्योंकि जितने रिसोर्सेज होते हैं उतना इंसान आगे जा सकता है। कल तक एक रिसोर्स था, आज 10 रिसोर्सेज हैं जिसके जरिए हम कुरान आप तक पहुंचा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस सब के पीछे क्या माल नहीं लगता, एफर्ट्स नहीं लगती, अगर ये सब कोई ना करे तो आप बताइए कहाँ जाएगा। हर साल जब भी दौरे कुरान होता है तो कई साथी जिनको इन हकीकतों का पता है वो रश करते हैं इस बात में कि हमने पे करना है इस ऑनलाइन सेटअप को, कोई वेबसाइट के पीछे है, अच्छा वेबसाइट पे क्या खर्चा है हमें बताइए हम करें, क्योंकि आपका अपना फायदा है। लेकिन फर्स्ट तबिकुल खैरात जबरदस्ती नहीं होता, लोगों को मजबूर करके नहीं होता। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह हमारी नेमतों को अल्लाह के रास्तों में लगा दे, और ना दिल चाहे तो अगला हिस्सा इल्लाही मर्जियुकुम जमीअन, आज खुद अपनी खुशी से अल्लाह की तरफ नहीं आओगे तो नो प्रॉब्लम, आखिरकार तुम सबको अल्लाह की तरफ पलट कर जाना है। वापसी का सफर याद रहे तो इस दुनिया से ज्यादा इंसान आखिरत के लिए खर्च करता है। फरमाया फयुनब्बियुकुम बिमा कुंतुम फीहि तख्तलिफून, फिर वो तुम्हें असल हकीकत बता देगा जिसमें तुम इख्तलाफ करते रहे हो। पस ए नबी, आप अल्लाह के नाजिल करदा कानून के मुताबिक इन लोगों के मामलात का फैसला करें और इनकी ख्वाहिशों की पैरवी ना करें। इसको हाईलाइट करें, नबी को अल्लाह ताला ये हुक्म दे रहे हैं, तो आज उम्मत मुस्लिमा के जजिस और आज के वकील और लॉयर्स और आम लोगों को क्या हुक्म होगा। हमेशा हक का साथ दें कोई भी हो। फरमाया कि होशियार रहो, ये लोग तुमको फितने में डालकर इस हिदायत से जरा सा भी इधर ना कर दें जो अल्लाह ने तुम्हारी तरफ नाजिल की है, फिर अगर ये इससे मुंह मोड़े तो जान लो कि अल्लाह ने इनके बास गुनाहों की पादाश में इनको मुबतलाए मुसीबत करने का ही इरादा कर लिया, और ये हकीकत है कि इन लोगों में से अक्सर फासिक हैं। अगर ये अल्लाह के कानून से मुंह मोड़ते तो क्या फिर जाहिलियत का फैसला चाहते हैं? हालांकि जो लोग अल्लाह पर यकीन रखते हैं इनके नजदीक अल्लाह से बेहतर फैसला करने वाला और कौन हो सकता। हाईलाइट कीजिएगा आयत 50 का फर्स्ट हिस्सा, अफ हुक्म अल जाहिलियत यबगून, मुझे अल्लाह थोड़े बरसाने वाला था। अल्लाह ताला कहते हैं, मैंने तुम्हें इतना प्यारा इस्लाम दिया, तुम्हें इतना प्यारा नबी दिया, कोई ऐसी चीज है जो हमें पसंद नहीं अपनी? मक्का कितना प्यारा, काबा कितना प्यारा, मोहम्मद रसूलुल्लाह कितने प्यारे, कुरान कितना प्यारा, मदीना कितना प्यारा। मेरा नहीं ख्याल हम में से कोई एक भी ये कहेगा मुझे अपने दीन की ये चीज नहीं पसंद। सब कुछ दिया, इतना कुछ अल्लाह ने हमें दिया, तो अल्लाह कहते क्या इस सब को छोड़कर जाहिलियत लोगे? तो जाहिलियत क्या होती है? इस्लाम के मुकाबले में डिक्शनरी में अगर आप कोई लफ्ज देखें तो वो जाहिलियत है। मा कबल अल इस्लामी हुवल जाहिलिया, वो टाइम इरा, वो टाइम जोन जो इस्लाम के दुनिया में आने से पहले का था, उसको जाहिलियत का दौर कहते हैं। आप आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन आपने बचपन में से ये सुना है कि अरब माशरे के हालात बड़े तंग थे। क्या तरीके थे जाहिलियत के उस दौर में? अगर आप नोट करें, बेटियों को जिंदा होते ज़िबा कर देते थे। आज हम क्या कर रहे हैं? एबॉर्शन करवाया, पता चल गया एक से दूसरी बेटी होगी, उसको जाया कर दो। अवॉर्ड कराता, वो इश्तेहार भी आपने कहीं ना कहीं पढ़े होंगे कि आज 500 रुपया लगा के चेक करवा लो और अल्ट्रासाउंड करा लो और 5 लाख बचा लो। क्या मतलब है कि 500 से अल्ट्रासाउंड कराओ, अगर बेटी है तो जिबा करके 5 लाख का जहेज बचा लो। ये मौजूद है चीजें, क्या जाहिलियत का तरीका नहीं? फिर इसी तरह देखिए कि इस्लाम कुरान से हमें पता चलता है कि जाहिलियत का तरीका क्या था। हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह सूरत अल अहज़ाब में अल्लाह ताला फरमाते हैं औरतों को क्या कहा गया, कर नफी बुयूतिकन वला तबर्रुज न तबर्रुज अल जाहिलियत लूला, कि तुम घरों में करार पकड़ो और अगर जाना पड़े बाहर तो तरीके से जाओ और जाहिलों की तरह बनठन करके अपने आप को बना संघार के दूसरों को ना दिखाती फिरो। अब वो जहां आएगा करेंगे। कुरान पाक में 4 जगह जाहिलियत का लफ्ज आया और एक दर्स है, अगर आप में से जो एडमिन सुन रहे हैं वो इसका लिंक दे। यानी जहां मैंने दिया, जहां जहां भी वो बात हुई, सब ने कहा आज तक हमने ये कभी नहीं सोचा था कि अल्लाह ने 4 दफा कुरान में जो जाहिलियत की है का हुक्म दिया, ये है इसका क्या रब्ता है? सुनेंगे इंशाल्लाह, आप इंजॉय करेंगे कि किस तरह आज हमने वो सब जाहिलियत के तरीके पकड़ लिए। सूद जाहिलियत में आम था, आज सूद आम है। बनाओ सिंगार करके गैर मर्दों को फितनों में डालना उस दौर में आम था, आज औरतों में आम हो गया। बेटियों को जिबा करना कल आम था, आज हो गया। अल्लाह ताला कहते हैं तुम्हें कदर नहीं है अपने इस्लाम की, क्या हो गया? तुम पढ़े लिखे जाहिल बनना चाहते हो? उनके पास तो हिदायत नहीं थी, तुम्हारे पास तो आ गई।